अब आगे एक और टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। हुकूमत खुद मुअल्लिम इनकलाब थी। असल बात यह है, बड़ों से बात शुरू होती है, यानी इनकलाब सिखाने वाली सबसे बड़ी हस्ती हुकूमत थी। अवाम से तो इनकलाब चाहें और ख़ुद ना करें, आप चाहें कि अवाम सारी रूल्स को फॉलो करें और आप ख़ुद ना करें, ये नहीं हो सकता। तो आइए पढ़ते हैं, पेज नंबर सब बोले 554, ठीक है। चलिए, फिर जो इलाके मुतलका कबाइल के इस्लाम लाने, मुआहदाना ताल्लुकात कायम करने और सियासी इताअत कबूल करने से मदीना की इस्लामी हुकूमत के ज़ेर नगीन आए थे, इनको यूं ही छोड़ नहीं दिया गया। जिस हाल में पड़े हों पड़े रहें और जो भी ख्यालातों किरदार इनमें राइज हुए हों होते रहें, बल्कि इनकी दावत पहुँचाने और इनकी तालीम तरबियत करने के लिए मौसर इंतज़ाम किए जाते, मामला सिर्फ इतना न था कि कुव्वत की लाठी घुमाकर किसी इलाके को ज़ेर नगीन किया और फिर मुसलमान इंसानों को अंदर से तब्दील किए बग़ैर भेड़ बकरियों के रेवड़ों की तरह हांकते फिरे। इस जुमले को नोट कीजिए, अंदर से इंसान को तब्दील करना असल बड़ी चीज़ होती है। अगर हर चीज़ तलवार की नोक से मनवाई जाती और हर तब्दीली डंडे के ज़ोर से की जाती तो ये जब्बारी 4 दिन चल सकती थी, लेकिन दिल बगावत पर आमादा हो जाते और फिर अवाम की बेजारी का लावा फटता तो किया कराया हवा हो जाता। कुव्वत के इस्तेमाल का जुज़ तहरीक इस्लामी के काम में दूसरे हर निज़ाम के मुकाबले में इंतहाई कलील था और दावत और तालीम और तरबियत का उनसर बहुत ही गालिब था। असूली नज़रियों पर कायम होने वाली हुकूमतें अपने अंदर तबलीगी रुख रखती हैं और इनकी सारी सरगर्मियों में मुकद्दम तरीन मकसूद ये होता है कि अवाम के दिल इस असूल और एतकाद को समझें और अखलास से कुव्वत कबूल करें। जिन पर निज़ाम हयात की असास कायम है, इनके तमाम के तमाम अहकमों को अपने मखसूस कामों के साथ साथ इस मरकज़ी फ़र्ज को भी अंजाम देना होता है। ऐसी हुकूमतें हर उस मुफीद तरीन चीज़ को मुस्तरद कर देंगी जो इनके असासी नज़रिए को नुकसान पहुँचाए और हर इस नुकसानदेह सूरत को भी इख्तियार कर लेंगी जो लोगों के जहनों में बुनियादी असूल को रासिख करे। इनके सामने तमाम मसलहतों में अहम तरीन मसलहत यही होती है कि शहरी नए निज़ाम की रुख के साथ हम आहंग हो जाएं और हम आहंग रहें और इनके दस्तों बाजू बनकर अपने अंदरूनी जज्बे से काम करने के काम करें और मिटाने की चीज़ों को मिटाएं। चुनाचे मदीना की इस्लामी हुकूमत ने एक तरफ तो यह एहतमाम किया कि सख्त तरीन जंगी हालात में भी साथ मिले हुए इलाकों में दावती और तबलीगी वफूद रवाना किए, यानी जो भी मदीना के इर्द गिर्द के इलाके थे। कम अज़ कम 4 मौके ऐसे हैं जिनमें मदीना से जाने वाले दायियाने हक को शरपसंद अनासिर ने शहीद कर दिया। दावत की राह में इंतहाई मजलूमी के साथ शहीद होने वालों की तादाद कुछ कम न थी। जंगे बदर, ओहद और खंदक के जुमला मुस्लिम शहदा से ज़्यादा थी। बहरहाल इंतहाई नाजुक और मुश्किल हालात यानी एमरजेंसी में भी इस बुनियादी फरीजे से गफलत नहीं बरती गई, बल्कि कुर्बानियाँ दे दे कर इसे जारी रखा गया। फिर बाज़ असहाब को मदीना में कुछ तरबियत देकर इन्हीं के कबाइल में दाई के तौर पर मामूर कर दिया गया। ऐसे चंद नाम हमारे सामने हैं, यानी तरबियत याफ्ता लोगों में सबसे पहले तुफैल बिन अमर दौसी कबीला दौस से, उरवा बिन मसूद जो कबीला सकीब से थे, आमिर बिन शहरान हमदान कबीले से, दिमाम बिन सालबा बनुसाद से थे, इसी तरह मुनकिद बिन हब्बान बहरेन से थे, सुमामा बिन असाल नजद से थे। इसके अलावा बास कबाइल या अफराद की तरफ खसूसी असहाब दावत को मामूर करके रवाना किया गया, जैसे हज़रत अली को हमदान, हुज़ैमा और मसहज की तरफ, मुगीरा बिन शोबा को नजरान की तरफ, दुबर बिन नखीस को अबनाए फारस क्या होता है, फारस के बेटे यानी उसके इर्द गिर्द की जगह, फारस के रूसा जो यमन में मुकीम थे उनकी तरफ भेजा गया, मुहैसा बिन मसूद को फदक की तरफ, अहनफ को कबीला सुलेम की तरफ, खालिद बिन वलीद को इलाका मक्का की तरफ, अमर बिन आज को अम्मान की तरफ, मुहाजिर बिन अबी उमैया को हारिस बिन किला शहजादा यमन की तरफ रवाना किया गया। लेकिन इससे बहुत बड़े पैमाने पर इस्लामी हुकूमत ने अपने सिविल हुक्काम से इस्लाम की इशात और तहरीक इस्लामी के फ़रोग़ की खिदमत ली। इस्लामी हुकूमत के अफसर कुछ नौकरी पेशा लोग न थे और ना वो रोटी कमाने के ख्याल से भर्ती हुए थे, वहाँ तो मकसूद सिर्फ कलिमतुल्लाह को सरबुलंद करना और इंसानों को भलाई के रास्ते पर डालना था। ये काम तनख्वाह के पुजारियों के करने का था ही नहीं, ये तो सिर्फ इस नौरानी इनकलाब के बेलौस खादिमों ही की दिलचस्पी की चीज़ हो सकती थी और इन्हीं के हाथों ये हो भी सकता था। वो लोग ना तो किसी ओहदे का लालच रखते थे, ना ग्रेडों और तरक्कियों के चक्कर में पड़ते थे। इनको तो ओहदे खुद पुकारते थे और फ़राइज़ खुद चुन चुन कर बुलाते थे और गुजर बसर के मुआवजे पर इनसे इंतहाई ऊँची खिदमात ली जाती थी। यहाँ एक मिसाल देते हैं, ये क्या عتاب بن اسید کو مکہ کا گورنر مقرر کیا گیا تو 1 درہم یومیہ تنخواہ مقرر کی۔ اس گورنر نے تقریر میں خود کہا کہ اللہ اس شخص کو بھوکا رکھے جو 1 درہم روزانہ پا کر بھی بھوکا رہا۔ ابن ہشام کی یہ روایت ہے۔ مراد کیا تھا؟ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 1 درہم لے رہا ہوں پھر بھی میرا پیٹ نہ بھرے۔ یہ لوگ اپنے عقیدے اور اپنے محبوب نظام کے دائی پہلے تھے اور کچھ اس کے اور بعد میں تھے، یعنی سب سے پہلے یہ خود دائی تھے۔ اپنے عمل سے انہوں نے تاریخ رقم کی۔ یہ خود ساز نہیں تھے، کون تھے یہ؟ یہ تاریخ ساز تھے، اسلام ساز تھے۔ یہ خوبی جب تک قائدین اور لیڈرز اور بڑوں میں نہ ہو تب تک دوسرے لوگوں میں نہیں آتی۔ تو لہٰذا انہوں نے اپنے عمل سے دکھا دیا کہ ان کو اسلام کا فائدہ اپنے فائدے سے زیادہ لگتا ہے۔ یہ لوگ اپنے عقیدے اور اپنے محبوب نظام کے دائی پہلے تھے اور کچھ اس کے بعد تھے۔ بس مدینہ کی حکومت جن لوگوں کو بھی کسی جگہ گورنر، جج، تحصیلدار اور مال افسر مقرر کرتی تھی، وہ اپنے اپنے حدود عمل میں توحید کے دائی، اسلام کے معلم اور اخلاق عامہ کے معمار بھی ہوتے تھے۔ ان حضرات کو جب ان کے فرائض سے آگاہ کیا جاتا تھا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اساسی فرض پر بھی ان کو متوجہ فرما لیتے تھے۔ مثلا حضرت معاذ بن جبل کو جند یعنی یمن میں مالی، انتظامی اور عدالتی فرائض سونپ کر افسر مقرر کیا گیا تو ان کو یہ تلقین بھی فرمائی کہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دو اور انہیں اسلام کے احکام سکھاؤ۔ پھر انہیں اہل کتاب مخاطبین کو ملحوظ نظر رکھ کر تفصیل سے دعوت کا اسلوب سمجھایا کہ انہیں توحید کی دعوت دینا، اسے مانیں تو پھر نماز کے لیے کہنا اور اس کے بعد زکوٰۃ کے لیے۔ یہی افسر اکثر و بیشتر اپنے ہیڈ کوارٹروں میں امام صلات بھی ہوتے تھے۔ البتہ بڑی آبادیوں میں جہاں تقسیم فرائض ناگزیر ہوتی وہاں انتظامی افسروں کے ساتھ مستقل آئمہ صلات کا تقرر بھی کیا جاتا، جیسے کہ عتاب بن اسید مکہ میں، عثمان بن ابی العاص طائف میں اور ابو زید انصاری عمان میں مامور ہوئے۔ سول افسروں کی تعداد چونکہ خاصی زیادہ ہے اس لیے یہاں اس کی فہرست نہیں دی جا رہی، لیکن اس تعداد کو دیکھا جائے اور ان کی علاقہ ہے تقرر یعنی جن علاقوں میں یہ مقرر کیے گئے ان کو دیکھا جائے تو سمجھ آتا ہے کہ اسلامی حکومت کی سول سروس نے اسلام کی روشنی کو پھیلانے میں کتنا بڑا کام کیا ہوگا۔ پھر یہ دائیان حق اپنی افسری میں اس عام تصور سے بالکل مختلف تھے جو اس وقت پھیلا ہوا ہوگا۔ نہ وہ اللہ سے بے خوفی، نہ وہ ٹھاٹ باٹ، نہ وہ جور و تعدی یعنی ظلم و زیادتی، نہ وہ عوام سے دور دور رہنا، نہ لوگوں کی ضروریات و حاجات سے غفلت، نہ ہٹو بچوں کی صدائیں۔ یعنی عموماً بڑے لوگ اپنے آپ کو لوگوں سے، پبلک سے کاٹ لیتے ہیں تاکہ لوگ ان کے قریب نہ سکیں۔ نہ دربانوں اور چوشوں کا ہنگامہ، نہ محلات و قصور، نہ سلب و نحب، نہ رشوت ستانی، نہ خوش آمدیوں کے حلقے، نہ اندھی داد و دہش یعنی تعریف، نہ شرابوں کے دور، نہ موسیقی کے زیر و بم، نہ رقاصوں کے ہجوم۔ یہ سول افسر بالکل نئی قسم کے افسر تھے، یہ حاکم نئے انداز کے حاکم تھے۔ لوگوں کے لیے ان کی حکومت کا تجربہ بالکل نیا تجربہ تھا۔ کم تنخواہیں لینے والے، سادہ گزر بسر کرنے والے، دیانتداری سے فرائض ادا کرنے والے، رعایا سے رحم و کرم رکھنے والے، بے لاگ انصاف پر چلنے والے اور اب پھر اپنے اللہ کے سچے پرستار، یہ نیا حاکمانہ کردار دلوں کو مسخور کر کے قریب لاتا ہوگا اور پھر جب یہ لوگ سچائی کا پیغام دیتے ہوں گے تو وہ سیدھا سینوں میں جاں گزین ہو جاتا ہوگا۔ بات واضح، کس کی بات دل میں جاتی ہے، کس کی بات میں تاثیر ہوتی ہے؟ جس کے اپنے اندر سچائی ہوتی ہے، جو خود اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ لوگ تو حکمرانوں کے نام کے ساتھ خرافات کے عادی تھے، لیکن صحابہ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز کیے گئے، ان کے اندر لوگوں کو اس طرح کا پروٹوکول نہیں نظر آیا۔ چنانچہ یہ امر واقعہ ہے کہ ابو موسیٰ الاشعری کو علاقہ زبید و عدن کا حاکم مقرر کیا گیا تو ان کی دعوت سے وہاں کے سارے لوگ بہت جلد مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح جریر بن عبداللہ بجلی کو یمن کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے حمیریوں، ذوالقلعہ حمیری پر افسر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے اتنا اثر ڈالا کہ وہ لوگ اسلامی تحریک میں شامل ہوئے اور اسی خوشی میں انہوں نے 4,000 غلام آزاد کیے۔ گویا حکومت کے سول محکمے اس سرگرمی اور یکجہتی سے متواتر کام کر رہے تھے اور اسی وسیع پیمانے کی تعلیمی مہم کا نتیجہ تھا کہ عرب کی بعید ترین آبادیاں یعنی دور ترین دور کے علاقوں میں جو رہتے تھے وہاں صرف سیاسی نہیں ذہنی اور قلبی انقلاب رونما ہوتا چلا گیا اور اسی کے ساتھ اخلاقی لحاظ سے کایا پلٹ گئی۔ بہرحال عرب کا اجتماعی انسان بدل کر بالکل نئے روپ میں ابھرا۔ تو کیا ساری بات کا خلاصہ نکلا؟ कि जो लोग हुक्मरान बनाए गए, बड़े बनाए गए, जिनको जिम्मेदारियां दी गई, यानी जो किसी भी जगह मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव बने, उनके अंदर सच्चाई थी, उनके अंदर माल की मोहब्बत नहीं थी, उनको इस्लाम अपनी ज़ात से ज़्यादा प्यारा था। इस वजह से वो जिधर गए लोगों के दिलों को मसहूर करते गए। आज हम अपने हुक्मरानों पर इस असूल को ले लें तो भी सेम बात होगी। अगर हम इस असूल को लेकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देख लें, याद रखिए हर जगह असूल यही है, जितना ज़्यादा आप खुद किसी भी चीज़ के मामले में सच्चे होते जाएंगे, खरे होते जाएंगे, उतना ज़्यादा अल्लाह ताला आपके लिए दूसरों को भी काबले सताइश बनाते जाएंगे, और बात में तासीर होगी। सबसे बड़ी बात है, कभी भी आपके घर का कोई मसला ना सुलझे और आप दूसरे को देखते रहने की बजाय अपने ऊपर लीजिए, क्या मेरा तो नहीं कोई कसूर? और याद रखिए, जब तक आप और मैं अपने दामन में नहीं झांकेंगे, हमें दूसरों के धब्बे ही दिखते जाएंगे। चलिए फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अवाम की मुआशी फलाह। अरब के कसीरुल तादाद बदवी आबादी बिल्कुल ही खस्ता खाल थी, और बेशतर सहराई कबाइल खाना बदोश रहते और मवेशियों से हासिल शुदा कलील मईशत के साथ मसले असलहे के साथ लूट मार का पेशा अख्तियार कर लेते। शहरियों से दूर अरबियों के मुकीम कबाइल की हालत भी पतली थी। इनके अंदर के शयूख और सरदार मुआशी जिद्दोजहद के बेशतर समरात ले उड़ते। शहर थे ही कितने, मक्का, मदीना, ताइफ, सना, खजरमौत वगैरह। फिर ये भी बहुत बड़े शहर ना थे, कलील आबादियाँ थीं। ये कलील आबादियाँ बहसियत मजमू खुशहाल थीं, मगर ख़ुद इनमें भी बालाई और ज़ेरी तबकात थे। बालाई तबके ज़ेरी तबकात से भी इनका हक न जोड़ कर ले जाते, यानी क्लास सिस्टम जैसे हर जगह होता है, अपर क्लास लोअर क्लास के लोग। मदीना में यहूद तिजारत और ज़रात के साथ साथ सूद खुआरी के जाल फैलाए हुए थे। इसी तरह मक्का और ताइफ के बड़े बड़े मालदार लोग भी दूसरे ज़राए के साथ महाजनी, महाजनी क्या होता है, सूद की लेन देन करने वाले, महाजनी कारोबार करते थे। ऊपर के चंद ख़ानदानों के असराफ का ये आलम था कि शराबें पीकर चाहें तो 50 ऊँटों की गर्दनें काट दें और फिर फयाजी का सिक्का जमाएं। नशे में जाकर ऊँटों को ज़िबा करते, फिर वो गरीबों में गोश्त बढ़ता, वाह वाह बड़ी होती कि वाह जी, ये तो बड़े फयाज हैं। गाना बजाना मुआश के, यानी इश्क मोहब्बत, बदकारियाँ इनके कल्चर के नुमाया अबवाब थे। लेकिन दूसरी तरफ अवामे अरब का ये हाल था कि पेट की आग बुझाने के लिए गोह तक का शिकार करते। गोह क्या है? जानवर। टिड्डी दल आते तो टिड्डियाँ खाते, छिपकलियाँ तक चट कर जाते, मुर्दा जानवरों का गोश्त और जमा कर खुश किया हुआ खून और सूखा हुआ चमड़ा तक भून लेते। जिंदा जानवरों के बदन से टुकड़े काट कर खा लेते। सिरे से हलालो हराम और तय्यब व मकरूह की तमीज़ ही ना थी। लिबास और गज़ा और मस्कन ही का मसला हल ना हो पाता था तो तालीम और सेहत और इसके ऊपर के मसाइल का क्या जिक्र। इलाज के लिए वहाँ बुतों के हजूर प्रार्थना होती और कुछ टूने टोटके चलते, ये मतलब हिंदू धर्म की इबादत का तरीका है, काहिन और नजूमियों की चांदी हो जाती। तालीम नहायत महदूद पैमाने पर शहरों के सिर्फ आला खानदानों के अंदर भी थोड़े से अफराद को हासिल होती। बहरहाल बकिया सारा अरब जो कुछ भी इल्म हासिल करता था अपनी रोज़मर्रा की अमली ज़िंदगी के मदरसे से हासिल करता था। बहरहाल वहाँ एक बुनियादी और ठोस सवाल रोटी था, जिस कौम की अजीम अक्सरियत हर वक्त खाएंगे क्या के असूल पर सोचती रहे, इसे ना तो आला तर हकीकतों का ज़ौक दिया जा सकता है और ना वो बड़े मकासद के लिए कोई अजीम कारनामा अंजाम दे सकती है। ज़रा से इस पर गौर करें, आज हमारा तो नहीं ये हाल हो गया? कोई मरता है, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, जब कोई मरता है तो उसी वक्त घर वालों को फिक्र पड़ जाती है कि जो आएंगे पुरसे के लिए उनको खिलाना क्या है। फिर आवाज़ लगती है, आज का खाना मामू के घर से आएगा, आज ससुराल से आएगा, ये होगा दीनी महफिल, इल्मी महफिल, पार्टी, मीटिंग, खाएंगे क्या? चलिए अच्छी बात है, खिलाना चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा एक इशू तो नहीं बन जाता? कई लोग सिर्फ इसलिए अच्छे कामों में आगे नहीं बढ़ते कि आप दर्ज घर में रखेंगे तो खिलाएंगे क्या? 60 औरतों का खाना कैसे बनाऊंगी अकेले, और बाजार से बनवाएं तो पैसे कैसे होंगे? तो याद रखिए, बड़े काम करने वालों को खाने और पीने की बातों को छोटा रखना चाहिए। अच्छा हो, साफ सुथरा हो, शुस्ता हो, लेकिन ये छाया ना हो, यानी असल प्रोग्राम का मेन कोर सिर्फ खाना ना हो। माशी महरूमी की बस्ती में गिरे हुओं को अगर सहारा देकर कोई नज़रिया ऊपर उठा सकता हो और इनकी तवाज़ो फ़क्त वाजों से करे तो कभी भी बड़े पैमाने पर वो आवाम को हरकत में नहीं ला सकता। फिर अगर वो तलवार के ज़ोर से अपनी हुकूमत भी जमा ले, लेकिन वो हुकूमत ज़िंदगी के अव्वलीन मुआशी मसले का कोई हल ना दे सके, तो ऐसी सूरत में महज अखलाकी मफहूम में तामीर व इसलाह को कबूल करने पर आम लोग कभी तैयार नहीं हो सकते, बल्कि ऐसे तामीर व इसलाह को एक मुसीबत और अजाब समझ कर इससे निजात पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। इंसानियत नज़रिया हक़ से जब भी मफतूह होती है जबकि वह आक़बत के साथ दुनिया को भी संवारे और अख़लाक़ी इस्लाह के साथ मुआश के कदीये का हल भी निकाले। लोग इसी कुव्वत की ज़ुबान से बात सुनकर मुतासिर होते हैं, बल्कि इसके आसाए तादीब अदब सिखाने वाली लाठी इसकी ज़रबे भी हंसी खुशी बर्दाश्त करते हैं। ये भी नोट करें, एक दफ़ा लोगों के दिल आपसे जुड़ जाएँ, आपके बनाए हुए बताए हुए रूल्स आपकी सख्तियों को दिल की खुशी से मानेंगे। जिसके हाथों से इनके मसला रिस्क का कुफल खुले, यानी जहाँ से माली फ़ायदा हो लोग उसकी कड़वी बातें भी सुन लेते हैं। जिस तरह निरा मसला माश ले के उठना इंसानियत को अखलाकी लिहाज से हलाकत में डालना है, इसी तरह अखलाकी इसलाह के काम को ज़िंदगी के माशी तकाज़ों से अलग कर लेना सिरे से अखलाकी इसलाह ही को नाकाम बना देता है। इस्लाम दोनों ज़रूरतों का जामे है। मोहसिन इंसानियत ने जो तहरीक चलाई वो जहाँ दिलों को नूर ईमान और रूहों को अखलाकी इकदार देती थी, वहाँ वो पेट की रोटी बहम पहुँचाने के लिए भी बेहतरीन तदाबीर अमल में लाती थी। ऐन आगाज़ ही में इस्लाम के मुख्तसर से अखलाकी जाब्ते में एहतमाम मिस्कीन बड़ी अहमियत के साथ शामिल था। फिर यतीमों बेवाओं और मुसाफिरों की खबरगिरी करना हर मुसलमान पर लाजिम था। अरब जैसे कम पैदावार मुल्क में दौलत सीमोजर क्या है, चांदी और सोना, और अजनास की शक्ल में भी, ज़रई अराजी की शक्ल में भी और मवेशियों की शक्ल में भी नहायत महदूद हलकों में सिमटी हुई थी। दौलत की इन झीलों और तालाबों के बंद काट कर इसको अवामी तबकों की तरफ बहाव में लाना बड़ा ही टेढ़ा मसला था, यानी माल चंद बड़े लोगों के हाथ में था, और इस मसले का हल किए बगैर ज़िंदगी के बड़े बड़े मामलात की दुरुस्ती मुमकिन न थी। इस्लाम के मौशी कवानीन जो तदरीजन नाजिल हुए, एक मुतवसत हालत में तो दौलत को गर्दिश में रखने के लिए बिल्कुल काफ़ी थे, लेकिन इन कवानीन के निफाज से भी कबल बड़ा मसला दौलत की इन झीलों का था जो अरब के सहरा में पाई जाती थी। ये अदक मसला दकीक से, यानी बहुत ही गंभीर कह लीजिए, सरगर्मी जिहाद से अस खुद इस खूबी से हल हुआ कि कोई मुतबादल सूरत इतनी कामयाब मुश्किल से ही हो सकती। दुनिया के हर दीनी और लादीनी कानून में इस दौर से लेकर मौजूदा दौर तक मगलूब दुश्मन के असलहे और साजो सामान को बतौर गनीमत कब्जे में लेना एक मुसलमा हक रहा है। जंग को रोकने के लिए इंसानी जाने लेने से ज़्यादा कारगर तदबीर यह है कि हलीफ को असलहा और साजो सामान और रसद से महरूम कर दिया जाए। नीज फिल जुमला इसकी जंगी मईशत को कमज़ोर कर दिया जाए। इस्लाम ने भी गनीमत का हक बरकरार रखा और इसके लिए अपने ख़ास अखलाकी जवाबित नाफिस कर दिए। यहाँ कोई नजरी बहस नहीं कर सकते, लेकिन अमलन इस हक के तहत मदीना की इस्लामी फ़ौज ने जगह जगह से सिमटी हुई दौलत को कैद से निकाला और गर्दिश में डाल दिया। यहूदी सूद ख्वारों की दौलत जो अवाम में से निचोड़ी गई थी, कानून गनीमत के तहत बहाव में आई। सकीफ वालों की दौलत इनके कब्ज़े से निकली और अरब भर में फैल गई। इस तरह मदीना के इर्द गिर्द के जिन जिन शरपसंद कबाइल ने शोर किया, यानी आवाज़ उठाई, इनके शेख यानी इनके बड़े और दौलतमंदों के अम्बाल का एक बड़ा हिस्सा इस्लामी फ़ौज ने इनके कब्ज़े से निकाला और गर्दिश में डाल दिया। ये जो माल गनीमत की बाँट थी ना, उसमें भी ये हिकमत है कि चंद लोगों का माल जो है वो फिर अवामी मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल हो। जाहली रीत माल गनीमत के मतलब यह थी कि मैदान में जो जिसके हाथ पड़ गया वो उड़ा ले गया। किसी ने चोरी कर ली, किसी ने फरेब दे दिया, और फिर जो जितना ज़्यादा बड़ा और जोरावर हुआ इसने अपनी बड़ाई की धौंस से इतना ही ज़्यादा हिस्सा छीना, और जो कुछ बेहतरीन हुआ वो हथियार उठा लाया। इस्लामी निज़ाम जंग बिल्कुल नया अखलाक साथ लाया। इसके तहत सारा माल सुई सुई और पाई पाई यकजा होने के बाद कमांडर के हुक्म से तकसीम होता। फिर इसमें से 20% हिस्सा इस्लामी ख़जाने में जाता और बड़ी हद तक गुरबा और हाजतमंद तबकों तक पहुँचाया जाता। इस तरह मुल्की दौलत में एक अवामी हरकत आ गई और बाद में जूं जूं माशी कानून नाफिज होते गए इसके बहाव को इंज़िबात में लिया गया। इंज़िबात क्या? जब्त में लिया गया, कंट्रोल किया गया। फिर इस्लामी रियासत ने इन तमाम तबकों से जो ज़मीनों मवेशियों और तिजारती सरमाए के मालिक थे, मुस्लिम होने की सूरत में ज़कात और गैर मुस्लिम होने की सूरत में खराज और जिज़िये की آمدنیاں حاصل کیں اور ان آمدنیوں خصوصاً زکوٰۃ کا ایک عظیم حصہ غریب طبقوں کے لیے مخصوص کر دیا. ہر سال غلے، کھجور اور مویشیوں کی ایک بڑی تعداد عمرا سے غربا کی طرف منتقل ہونے لگی. سلجھانے کی تدبیریں کی گئیں. مدینہ کی مرکزی سوسائٹی میں سماجی مساوات کے ساتھ اقتصادی اخوت یعنی اکنامک برادرہوڈ کا نہایت کامیاب تجربہ محسن انسانیت نے دنیا کے سامنے پیش کیا. سارا عرب دیکھ رہا تھا کہ گھروں سے اکھڑے ہوئے لوگ، تہی دست غلام، فاقہ مست بدو اور اللہ مست قسم کے نوجوان جب اسلام کے سائے رحمت میں چلے جاتے ہیں تو ایک طرف تو وہ بڑے بڑے خاندانی اشراف کے شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ کس بے خوفی سے متکبر ترین مخالفین کو چیلنج کرتے ہیں، اور دوسری طرف ان کی ساری پریشانیوں کا مداوع ہونے لگتا ہے. ٹھکانہ بھی مل جاتا ہے، روزگار بھی پیدا ہو جاتا ہے، اسلحہ بھی مہیا ہو جاتا ہے، سواری بھی کبھی نہ کبھی ہاتھ آ جاتی ہے، اور نکاح کے لیے بھی راستے نکل آتے ہیں. پھر اسلامی نظام اخوت کی یہ برکات صرف مدینہ تک محدود نہ تھیں بلکہ چاروں طرف آہستہ آہستہ پھیلنے لگیں، اور ایک دن آیا کہ سارا عرب ان سے یکساں یعنی پورے طور پہ فائز یاب ہونے لگا. سمجھ آ گئے؟ یعنی جو برادرہڈ قائم ہوا تھا مہاجر اور انصار کا، اس کی بات تھی. اس سماجی مساوات، مساوات کیا ہوتی ہے؟ برابری، سوشل ایکویلٹی، اور اقتصادی اخوت یعنی اکنامیکل ایکویلٹی کے نئے نظام کو عرب کے عوام دور سے اس طرح محسوس کرتے ہوں گے جیسے وہ آسمانی دنیا کی کوئی جنت ہو جس میں عقیدہ توحید کی کنجی سے داخلہ ملتا ہے. آخر وہ سماجی اور معاشی کبریائیوں تلے پسنے والے لوگ کیسے ارمان نہ کرتے ہوں گے کہ وہ بھی اس جنت میں جگہ پائیں. یعنی سب کو یہ سسٹم اچھا لگا. محسن انسانیت نے عرب کے عام انسان کی مشکلات کو سامنے رکھ کر ذاتی طور پر بھی حد درجہ کے جود و سخا یعنی جنروسٹی، مال کا کھلے دل سے دینا، اس کا مظاہرہ کیا، اور بحیثیت صدر ریاست بھی بڑی فراخ دلانہ اور کریمانہ پالیسی اختیار کی. ذاتی ملک میں کبھی کوئی مال جمع نہ رہنے دیا بلکہ جلد سے جلد اسے مقامی حاجت مند اور بیرونی سائلوں میں تقسیم فرما دیتے. حکمران کی حیثیت میں بیت المال میں کبھی کوئی رقم پڑی نہ رہنے دی بلکہ جب کوئی حاجت مند سامنے آیا تو جو کچھ ممکن ہوا اسے دلوا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اصل اہمیت انسان کی تھی. اس کو ہائی لائٹ کریں. دا بیسٹ ایسٹ آف اے لیڈر از ہیومن. صدر ہیں، وزیر ہیں کسی ملک کے، اس ملک کے تیل کے کنویں، سونے کی کانیں، وہ اہم نہیں ہیں. اس ملک کے عوام اس کی دولت ہوتے ہیں، اور دولت کو انسانیت کی خادمہ قرار دیا یعنی یہ خدمت کرتی ہے ہماری دولت، زیادہ سے زیادہ اور کچھ نہیں. حد یہ تھی کہ بس اوقات بیت المال اور ذاتی ملک میں کچھ نہ ہوا تو سائلوں کی امداد کے لیے قرض تک لیا. جی، دوسروں سے قرض لیتے پھر دوسروں کی مدد کرتے. دور دور سے مصیبت کے مارے دیہاتی اور صحرائی ان فیاضیوں کا چرچا سن کر مدینہ آتے اور اس دریائے سخاوت سے جام بھر بھر کے رخصت ہوتے. مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک بار ایک بدو آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچ کر اکھڑ بن سے کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال خدائی مال ہے، تمہیں کچھ اپنے مال یا اپنے باپ کے مال میں سے نہیں دینا، لاؤ ایک اونٹ بھر کر سامان مجھے بھی دے دو. اس مجسمہ رحمت نے قدر خاموشی سے ٹھنڈے انداز میں فرمایا، بے شک یہ مال اللہ کا مال ہے اور میں اس کا غلام ہوں. پھر حکم دیا کہ ایک اونٹ بھر کے جو اور ایک اونٹ بھر کے کھجوریں بدو کو دے دی جائیں. وہ خوش خوش رخصت ہوا. یعنی ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا، اتنی بد تہذیبی سے بات کر کے آپ جو دینا تھا وہ بھی نہ دو. لیکن دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے رہتے تھے. ہم تو ذرا سی بات ہمارے نام ہماری ذات پہ آ جائے سر سے پاؤں تک ہم سرخ ہونے لگتے ہیں. یاد رکھیے، ٹھنڈے سبھا کے ساتھ جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ جوش سے اور غصے میں آ کر نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ بحرین سے خراج کی یعنی بڑی کثیر دولت آئی کہ اس سے زیادہ مال کبھی مرکز حکومت میں نہ آیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے صحن میں اس کا ڈھیر لگوایا اور پھر جو جو آتا گیا اسے دیتے گئے، یہاں تک کہ کپڑے جھاڑ کر اٹھے اور گھر تشریف لے گئے. داد و دہش یعنی دینے لینے اور ایسے واقعات جو تھے، اس کے ایسے واقعات مدینہ میں نت ہوتے یعنی اکثر ہوتے، اور مختلف اطراف سے مسافر، سائل اور حاجت مند آ کر فائدہ اٹھاتے. یہ لوگ جب علاقوں میں جاتے ہوں گے تو اسلامی حکومت کی غریب پروری کی مجسم داستانیں بن کے جاتے ہوں گے. ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ ان داستانوں سے کتنے دلوں نے اثر قبول کیا ہوگا اور کتنے سینے اسلام کے لیے کھل گئے ہوں گے. اسلامی ریاست کے سربراہ اعلیٰ کی فیاضانہ پالیسی کے ذہنی اثرات کا اندازہ دوسری ایک مثال سے بخوبی ہو سکتا ہے. ایک شخص آیا اور اس نے اپنی معاشی بدحالی کا دکھڑا رونے کے بعد سوال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑیوں کے درمیان چرتی ہوئی بکریوں کو का एक रेवड़ इसे अनायत फरमाया। वो यतिया पाकर जामे में फूला न समाता, यानी बड़ा खुश था, अपने कपड़ों से बाहर आ रहा था, कबीले में जाकर कहता फिरा, ऐ लोगो इस्लाम कबूल करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसी सखावत करते हैं कि तंग दस्ती का ख़तरा बाकी नहीं रहता। ये किताब अल मवाहिब अलदीनिया, यानी ये बात वहाँ लिखी हुई है। इसी तरह सफ़वान बिन उमैया का ख़ुद अपना बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ माल अता किया जिनमें 300 बकरियाँ थीं, तो इस इनायत का मुझ पर यह असर हुआ कि जहाँ इससे कबल आपसे बढ़कर कोई शख्स मुझे नापसंद ना था, वहाँ अब आपसे ज़्यादा कोई महबूब ना रहा। और इसी के बारे में ये शेर है, हुवल्लज़ी ला यत्किल फ़क्र इज़ा युती वलव कसुरन नाम बदामू। ये वो हस्ती है जो अता बख्शिश पे आती है तो इसे अपने तही दस्त होने का ख़दशा नहीं होता, कोई अंदेशा नहीं होता कि मैं गरीब हो जाऊँगा, ख्वाह इसके सामने कितनी ही कसीर मखलूक क्यों न साइल बन के आए और मुतवातर ये तांता बंधा रहे। सखावत के इसी आम चर्चे का नतीजा था कि हुनैन के अम्बाले तकसीम करके आप वापस हुए तो आसपास के बद्दू दौड़े दौड़े आए और आकर लिपट गए कि हमें भी कुछ इनायत हो। नबी सल्लम ने परेशानी के आलम में एक दरख्त के तने का सहारा लिया और माजरत करते हुए कहा, अगर इन जंगली दरख्तों के बराबर भी मेरे पास ऊँट होते तो मैं तुम सब में बाँट देता, तो मुझे ना बखील पाते, ना गलत गो और ना कम हौसला। ये बुखारी की रिवायत है। मुराद है कि है ही कुछ नहीं तो तुम्हें दूँ। अब मुमकिन है कि एक घटिया जहन इस अताओ बख्शिश को ये मानी पहनाए क्या कि मालो दौलत के ज़ोर से जहन फतह किए गए हों, ये भी नोट कीजिए कि इसलिए देते थे कि लोगों की हिमायत हासिल हो, नाउज़ुबिल्ला, और रिश्वत देकर लोगों को हम ही बनाया गया। मगर हकीकत बिल्कुल दूसरी थी, माशी बदहाली में पिसे हुए लोगों को संभालना और इनको जहनी पस्ती से निकालना इस्लाम के बिल्कुल असूली तकाज़ों में शामिल था। इंसानियत के वो तबकात तो बड़े ही काबिल रहम होते हैं जो माशरे के जुल्म की वजह से पेट के मसले में इस बुरी तरह घिर जाते हैं कि ज़िंदगी के आला तकाज़ों पर तवज्जो तक करने का इन्हें मौका नहीं मिलता। ऐसे मुसीबत के मारों को तो शायद इंदल्ला भी कोई रायत मिल जाए। अरब की बेशतर आबादी इस हाल में थी और इनको जहाँ जहाँ कलमे तैयबा की ज़रूरत थी वहाँ रोटी कपड़े की भी मोहताजी थी। मदीना के लिए नए मुआशी निज़ाम अख़ुव्वत से बहरामंद होने वालों को शायद पहली बार मौका मिला होगा कि वो बदन की इब्तदाई ज़रूरियात के लिए घटिया उलझामों से बालातर, उलझावों यानी उलझना परेशानियाँ, बालातर होकर ज़िंदगी के आला मसाइल पर सोचें। यानी हम हर वक्त अपनी ज़ाती उलझनों में खोए रहते हैं, इससे उठकर ऊपर सोचिए, अजीम हकीकतों को सीने में जगह दें और कीमती अखलाकी इकदार को अपने अंदर नशोनुमा दें। लाजिमन इक्तसादी इस्लाम के फैलाव के लिए रास्ते हमवार किए होंगे। इस्लाम का माशी निज़ाम तो बाद में तकमीली शक्ल तक पहुँचा होगा जबकि इसके सारे असूल नाफज होकर काम करने लगे होंगे, लेकिन इब्तदाई आसार ही से अवाम की उम्मीदें मदीना से वाबस्ता हो गई होंगी कि यहाँ से हमें नूर हक के साथ साथ माशी मसले का हल भी हासिल होने वाला। यानी अल्लाह के नबी से दीन का फ़ायदा तो लेते ही थे, नूर हक समझ गए ना, यानी आप लोगों के लिए एक हक के पयाम्बर थे, लोगों को हिदायत दिखाते थे, इस कुरान के नूर से फ़ायदा देते थे, लेकिन जब लोगों को साथ दुनियावी फ़ायदे भी मिल जाएं तो याद रखें कि उनकी राय और पुख्ता होने लगती है। बात समझ गए। नबी सल्लम ने जो दिया लिया, ये कोई रिश्वत नहीं थी बल्कि ली मुअल्लफतिल क़ुलूब था, दिलों को उल्फत दिला देना। तो कितना खूबसूरत ये टॉपिक था, अल्लाह ताला आज हमें भी इस पे गौर व फिक्र की तौफीक दे। एक एक चीज़ को पढ़ने से ये यकीन आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर लीडर इंसानियत को न मिला, न मिलेगा और न इससे पहले कभी हुआ। तो अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे नबी के सिखाए हुए तरीक़ों पे चलने वाला बनाए, हमारी हुकूमतें आज इसी कानून के तहत हों, हमारे सारे मामलात सारी चीज़ें इसी के अंदर आएँ और अल्लाह ताला हमें बेहतरीन उम्मत बना दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु ताला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।